శాంతి. గుడ్ ఈవినింగ్. అభీ కే ఇస్ సత్ర మే ఆప్ సభీ కా బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై, స్వాగత్ హై, స్వాగత్ హై. అభీ కా ఆప్కా జో సెషన్ హై, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్, जिसको लेने के लिए हमारे बीच में भ्राता ओंकार जी पहुंचे हैं, हम तालियां बजाकर आपका स्वागत करते हैं. तो इस सेशन के स्टार्टिंग से पहले मैं कुमारी रिया, जो कि अमरावती से हमारे बीच में आई हैं, उनको आमंत्रित कर रही हूं एक सुंदर नृत्य के लिए. तेरी महफिल नाच तक के गीत पर वो आ रहे हैं. इस नन्ही कुमारी का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे.
तेरे बन गए मसीहा, तेरी सदा में
थैंक यू कुमारी रिया का, बहुत सुंदर कवाली के रूप में नृत्य हमारे बीच में प्रस्तुत किया, सहारा मिला तेरी बड़ी मेहरबानी। एक बार फिर से धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम धन्यवाद करेंगे। और मैं अभी रूबरू करा रही हूँ प्रोफेसर ओकारचंद जी को। आप भ्राता प्रोफेसर ओंकारचंद जी कुशल इंजीनियर, राजयोगी और विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में ही सेवारत हैं। वहां पर आप संस्था द्वारा प्रकाशित मैगजीन्स जैसे वर्ल्ड रिन्यूअल, ज्ञानामृत और उत्थान की एडिटिंग में सहयोग देते हैं। आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से 1993 से जुड़े हैं। आप संस्था के समाज सेवा प्रभाग के एक वी प्रोजेक्ट अपना सोशल सेवा के अंतर्गत बना है, जिसके आप मुख्य संयोजक भी हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लाइफ मेंबर और राजयोग एजुकेशन व रिसर्च फाउंडेशन के समाज सेवा प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो आपने पूरा बायोडाटा सुन लिया। तो भ्राता जी जो कि आज हमारे बीच में हैं, आप अनेक प्रकार के लेक्चर्स आदि सब देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी सुनाते हैं वो आप अपने जीवन के अंदर धारण भी करते हैं। तो ऐसे भ्राता जी का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज का जो हमारा ये सेशन है और उसका जो हमारा आज का ये टॉपिक है, उस पर आप प्रकाश डालेंगे और उससे हमें लाभान्वित करेंगे। भ्राता ओंकारचंद जी।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, सभी दिल से बोलेंगे ओम शांति, एक बार सभी मुस्कुराकर बोलें ओम शांति। उससे पहले कि आज के सेशन को हम स्टार्ट करें, एक मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे। सभी अपने कॉपीज नीचे रख के आराम से बॉडी को रिलैक्स करते हुए एक मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। कहीं नहीं देखेंगे, ना इधर ना उधर, केवल अपने आप से बात करेंगे। चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपने आप से बात करते हुए अपने से जरा पूछ लें कि आज जो हमारा जीवन है उसमें अगर कहीं टेंशन है, कहीं चिंता है, कहीं इरिटेशन है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं डिप्रेशन है, तो उसका कारण कौन? कौन हमें दर्द देके चला जाता है? अगर हम खुश हैं या गम में हैं तो उसका कारण कौन? अपने आप से पूछ लें कि पास्ट का कड़वापन कहीं मेरे वर्तमान को कड़वा तो नहीं बना रहा? क्या बीती हुई बातें, घटनाएं मुझे बार बार याद तो नहीं आती? और जब वो याद आती हैं तो मेरी खुशी कहीं गायब तो नहीं हो जाती। जब मैं अकेले होता हूं और सोचता हूं कौन से संकल्प मुझे सबसे ज्यादा आते हैं, भूतकाल के, वर्तमान के या भविष्य के, क्या मैं वर्तमान के इन सुंदर लम्हों का आनंद ले रहा हूं, क्या मुझे वर्तमान में जीना आता है, क्या मुझे जरूरत है अतीत से मुक्त होने की, कहीं मेरा समय गुजरे हुए पलों की चिंता में ही तो नहीं जा रहा, कहां जाता है मेरा समय। अच्छी तरह अपने से पूछ लें और अपने आप को याद दिला दें कि अब मुझे आज से वर्तमान में जीना है, मुझे पास्ट की प्रिजन से मुक्त होना है। आज का लेक्चर मुझे वर्तमान में जीना सिखाएगा, वर्तमान को सुहाना बनाना सिखाएगा, वर्तमान को खूबसूरत बनाना सिखाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में केवल वर्तमान है। मैं वर्तमान का ही भरपूर फायदा उठा सकता हूं। आंखें खोल लीजिए। अभी जो आप चिंतन कर रहे थे तो आपने पाया और अपने आप से पूछा भी होगा कि ज्यादातर टाइम हमारा कहां जाता है, पास्ट में जाता है, प्रेजेंट में रहता है या फ्यूचर में जाता है। एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 80% थॉट्स हमारे मन में पास्ट के चलते रहते हैं, 15% फ्यूचर के चलते हैं, ओनली 5% हम वर्तमान में मुझे अब क्या करना है उसके बारे में हम सोच पाते हैं। तो ये जो अतीत की गुलामी है, क्या इससे हम मुक्त हो सकते हैं? क्या आप मुक्त होना चाहेंगे? जो अतीत की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं वो कृपया अपना दाहिना हाथ खड़ा करें। जो अतीत है, जो पास्ट है, जो एक प्रिजनर हमें बनाया हुआ है, उसको छोड़कर हमें फ्यूचर के आर्किटेक्ट बनना है। और फ्यूचर का आर्किटेक्ट वही बन सकता है जो वर्तमान को एंजॉय करना जानता है। हमारे हाथ में केवल और केवल प्रेजेंट है। हम ना तो भूतकाल में जाके किसी चीज को बदल सकते हैं, ना ही भविष्य को, जो अभी हुआ ही नहीं है, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि हम ज्यादातर टाइम पास्ट का पोस्टमार्टम करते रहते हैं या फ्यूचर का ऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट, जो एक बहुत ही बढ़िया वर्ड गिफ्ट है, बहुत बढ़िया एक प्रेजेंट है, उसको एंजॉय करना नहीं जानते। बुजुर्ग लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। और आजकल के यंग जनरेशन कहां जीती है? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्लानिंग। लेकिन समझदार वो है जो वर्तमान में जीना जानता है। हमें फोकस वर्तमान में करना है, क्योंकि हमारे हाथ में केवल और केवल वर्तमान के ही कुछ क्षण हैं, जिनको अगर हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। और आज जो टुडे है, कल वही तो यस्टरडे बनने वाला है, पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। भूतकाल की बातें भूत बनकर कई बार हमें बहुत तंग करती हैं। करती हैं या नहीं करती? भूतकाल के भूत बार बार हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं और हमारा सुख शांति सब छीन के चले जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ अन्याय हो जाता है, कोई व्यक्ति हमें तंग करता है, तो बार बार वही बात याद आती है। बात हुए 10 साल हो चुके हैं, आज वो बात भी वैलिड नहीं है, वो व्यक्ति भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको याद करते हैं तो आपकी मन की स्क्रीन पर वो व्यक्ति दोबारा आ जाता है और वो बात को रिवाइंड कर करके वो बात केवल एक बार हुई होती है, लेकिन अगर हमने उसको 100 बार रिवाइंड किया तो कितनी बार कष्ट मिलता है, कितनी बार कष्ट मिलेगा, 100 बार। जिस व्यक्ति ने आपको वो बात कही वो भूल भी गया है, उसे याद भी नहीं है कि उसने कब क्या आपको कहा। मान लो किसी ने आपकी इंसल्ट की, आपके लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी कर दी, आपके लिए कोई व्यंग्य कर दिया, कोई कमेंट कर दिया, आपको बेइज्जती फील हुई और वो बात आपने गांठ बांध ली, वो बात आपने गठरी बांध के अपने कंधे पे अपने सिर पे रख ली, और जब आप खाली बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, वो बात बार बार याद आने लगती है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर हम अपने आप को विक्टिम बना के फील शो करते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जो मेरे साथ हुआ वो भगवान किसी के साथ ना करे, और हम इंतजार करते हैं कि जो मेरे साथ बुरा हुआ, जो मेरे साथ गलत हुआ, वो दूसरे के साथ भी हो जाए। और जब तक होता नहीं तब तक हमें चैन नहीं आता, तब तक हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आती। तो ये है पास्ट की प्रिजन, पास्ट हमें तंग कर रहा है। जिसका पास्ट ठीक नहीं है, पास्ट का बार बार चिंतन हम करेंगे तो वर्तमान और भी बिगड़ेगा और फ्यूचर के जो अच्छा होने की संभावना थी वो भी कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री विच येट टू बी बोर्न, ओनली प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, इज ए प्रेजेंट जो हमारे पास एक गिफ्ट के रूप में है। भूतकाल एक इतिहास है, भविष्य एक रहस्य है, केवल वर्तमान हमारे हाथ में है। भूतकाल एक सपना है, भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। उस अपने को समझने की जरूरत है, प्रेजेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम आज के दिन में, इस पल मैं क्या कर सकता हूं, जो चीज मेरे हाथ में है उस पे फोकस करने की जरूरत है। कामयाबी हमारे चरणों में होगी अगर हम वर्तमान पे फोकस करेंगे। पास्ट तो एक कैंसल्ड चेक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, फ्यूचर एक प्रॉमिसरी नोट है, केवल प्रेजेंट हार्ड करेंसी है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अतीत की गुलामी नहीं, भविष्य के निर्माता बनना है, और भविष्य का निर्माण उसकी नींव वर्तमान में है, अभी में है, अभी मुझे क्या करना है। हम जब पास्ट में जाते हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारे साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, बार बार वो बात याद आती है, और हम अपने आप को क्या बनाते हैं, क्या फील करते हैं उस वक्त, जैसे ही वो कष्ट वाली बात, वो कड़वी बात, वो चुभने वाली बात आपको याद आएगी, आप अपने आप को विक्टिम की फीलिंग में ले आएंगे, एक विक्टिम की स्टेट में ले आएंगे, पीड़ित की स्टेट में ले आओगे, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसकी वजह वो व्यक्ति है, उसकी वजह से मेरे के साथ ये चीज हुई, बार बार वो चेहरा सामने आएगा। आपको क्या पता मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ, आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई, कितना बड़ा धोखा हुआ। बार बार उसको याद करके हम दुखी परेशान होते रहते हैं। अब मुझे उस विक्टिम की स्टेट से, उस विक्टिम की फीलिंग से बाहर आना होगा। विक्टिम हम खुद अपने आप को बना रहे हैं। मेरी पेन का कारण कौन है, मैं या दूसरा? कौन मुझे दर्द दे रहा है, कौन मुझे हर्ट कर रहा है, कौन मेरी परेशानियों का कारण है, मैं या मेरी सास, मेरी बहू, मेरा बॉस, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, कौन मुझे विक्टिम बना रहा है। हम आमतौर पर चर्चा करते हैं कि मेरे साथ उस व्यक्ति ने बहुत पॉलिटिक्स खेली, उसने मुझे बहुत चीट किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, ऑफिस में उसने मेरे बारे में अफवाहें फैला दी, र्यूमर्स फैला दिए, मेरी आलोचना करता रहता है, जब मौका मिले क्रिटिसाइज करता रहता है, और उसकी वो बात हमें चुभती रहती है। वो बात जैसे ही हम याद आती है हमें दर्द होने लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम उस व्यक्ति को रोक सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज ना करे, आपके बारे में र्यूमर्स ना फैलाए, आपको डोमिनेट ना करे? किसी को रोक सकते हैं? आमतौर पर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कई बार तो उसके साथ सामने भी जाके उसे कहते हैं आपको ये बातें मेरे बारे में नहीं कहनी चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे दुख दर्द का कारण वो है। लेकिन असलियत ये है कि दुख दर्द का कारण वो नहीं, उसने जो करना था किया, उसने जो पॉलिटिक्स करनी थी की, उसने जो चीटिंग करनी थी की, उसके बाद आपने क्या अपने बारे में सोचा वो आपको दुख दे रहा है, वो आपको हर्ट कर रहा है। अब समझाना उसे नहीं है कि उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, अब समझाना मुझे अपने आप को है कि वो कुछ भी बोले कुछ भी करे, मैंने उसकी बात का असर अपने ऊपर नहीं होने देना है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? हम अपने आप को समझा सकते हैं? हम तो अपना कहना मान सकते हैं ना, दूसरे की तो कोई गारंटी नहीं है हमारी बात माने, आजकल तो अपने बच्चे भी कहना नहीं मानते, तो दूसरे की क्या गारंटी लेंगे। लेकिन हम अपने आप को समझा सकते हैं कि मुझे विक्टिम नहीं बनना है, मुझे किसी की बात जो पास्ट में उसने मुझे कही थी उससे जरा भी हर्ट नहीं होना है। मुझे दुख में आना या सुख में रहना ये किसके हाथ में है, मेरे हाथ में या उसके हाथ में? हमारे हाथ में है। तो आज से क्या संकल्प लेंगे, दूसरा कुछ भी कहे मुझे हर्ट नहीं होना है। क्योंकि जब हम हर्ट होते हैं पता क्या होता है, क्या होता है, फिर हमारे अंदर बदले की भावना पैदा होती है, फीलिंग ऑफ रिवेंज आने लगती है, हमें लगता है कि अगर सेटल स्कोर को सेटल करना है देन आई हैव टू टेक द रिवेंज, अगर बात को ठीक करना है तो हिसाब बराबर करना पड़ेगा, उसने हाथ से बदला लिया मुझे हाथ का बदला हाथ से, आंख का बदला आंख से, आई फॉर आई तित फॉर तुत फॉर तुत, ये हम सोचते हैं टेट फॉर टैट कि अब उसको बराबरी करेंगे तभी हिसाब बराबर होगा। लेकिन क्या कभी हिसाब बराबर होता है? हम उसके साथ करेंगे वो हमारे साथ करेगा, फिर हम उसके साथ करेंगे फिर वो हमारे साथ करेगा, वो बढ़ता जाएगा और एक विशियस सर्कल में हम एंटर कर जाएंगे। इसलिए कहा कि ये जो रिवेंज की फीलिंग है ये एक इमोशनल पेन है, एक मेंटल पेन है जो हमें बार बार दर्द से चिपके रहने के लिए कहती है। जब हमारे साथ गलत होता है, कोई हमें तंग करता है, तो हम बार बार उस दर्द को याद करके उस दर्द के साथ चिपके रहते हैं और खुद ही खुद को सजा देते रहते हैं। देते हैं सजा या नहीं? जैसे ही आप उस दर्द को रिवाइंड करेंगे आप खुद को ही विक्टिम बना के खुद को खुद ही पनिश करते जाते हैं। अब उससे बाहर आना है। अगर किसी ने आपको घाव दिया और आप बार बार उसको टच कर रहे हैं तो घाव भरेगा या बढ़ेगा? उसे टच नहीं करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वही तरीके बताऊंगा कि वो घाव कैसे भरे जाते हैं, जो पास्ट की बातें हैं जो परेशान करती हैं उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, वो फार्मूला आपको आज मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि मुक्त आकाश में कील नहीं गाड़ सकते। अगर कील गाड़नी है तो दीवार होना जरूरी है। कोई व्यक्ति कितनी भी तीखी बात करे, कील की तरह तीखी बात हो, कील को आप आकाश में गाड़ सकते हैं? उसके लिए दीवार चाहिए। तो आपने अहंकार की दीवार, ईगो की दीवार अगर आपने खड़ी की, उसने तीखी बात कही, कड़वी बात कही, आपको चुभेगी। लेकिन अगर आप मुक्त आकाश की तरह बन गए, कोई कितनी भी किले मार दे, कितने भी कांटे चुभा दे, आपको असर होने वाला नहीं होगा। तो वो चीज आप कर सकते हैं। भूतकाल को भूलना है। बीती हुई बातें हमारे मन से मिटें कैसे? मन एक स्लेट की तरह है, मन एक कागज की तरह है। कागज पे लिखी हुई बात को जैसे मिटाया जा सकता है रबड़ से, क्या उसी तरह मन से जो मन में जो बात चली गई है, मन पे जो लिखी गई है, उसको भी मिटाया जा सकता है? क्या उतना ही आसान है जितना कागज से लिखी हुई बात को मिटाना, या कुछ इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे? मान लो किसी व्यक्ति को कांटा चुभ जाए तो कांटे को भी निकाला जा सकता है। किसी व्यक्ति को गोली लग जाए, गोली को भी सर्जरी करके निकाला जा सकता है। लेकिन कोई बात अगर किसी के मन में चली जाए और वो गहरी उसमें बैठ जाए, अब उसको कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन इज दिस। लोग आपको कहेंगे भूल जाओ, जो हुआ भूल जाओ, पर भूलें कैसे? क्वेश्चन इज दिस, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय की हमने पोइम बचपन में पढ़ी थी, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, कितने उसके साथी छूटे, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कितना अच्छा मैसेज है। पास्ट इज पास्ट, हमारे यहां कहते हैं बीती को बीती जानो, दुनिया ना जीती जानो। जो बीत गया वो वापस नहीं आता। जो बीत गया उसको बार बार याद करके, जैसे कोई व्यक्ति कब्र में जाके किसी की कब्र से मुर्दों को उखेड़ता रहे, वो ऐसा ही है जैसा कोई बीती बात को याद कर रहा हो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भूतकाल भूत बन के हमें परेशान करेगा अगर वो दुखद बातें आपकी मेंटल स्क्रीन से डिलीट नहीं हुई। मन भारी हो जाएगा। जब मन को आप बहुत सी चीजों से भर देंगे, तभी तो आपका मन सिर भारी होता है। हमने पास्ट की तमाम बातें सब याद होता है हमें। हम कहते हैं उसने जो मेरे साथ किया ना भूला हूं, ना भूलना चाहता हूं, ना भूलने की कोई मेरी प्लान है, क्योंकि उसने मेरे साथ किया ही ऐसा। नहीं भूलो किसका नुकसान है? जिसने किया, जिसने बोला, वो तो भूल गया है। आपने याद रखी है, इसलिए नुकसान किसका हो रहा है? अगर हमारा नुकसान हो, उसका नुकसान हो रहा होता, आप सारी उम्र याद रखो। लेकिन नुकसान मेरा हो रहा है, इसलिए भूलना किसे है? मुझे भूलना है। अब वो भूले कैसे? बात वही आ जाती है कि उस बात को भूले तो भूले कैसे। 5-point formula is हेयर। आपके आगे स्क्रीन पे 5 point मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। डाइवर्ट द अटेंशन, रिप्लेस विद गुड मेमोरीज, लेट गो कर दो, अंडरस्टैंड द कार्मिक थ्योरी एंड फॉरगिव अदर्स। 5 are equally important. 1 by 1 I will take each. लेट अस स्टार्ट विद डाइवर्ट द अटेंशन। हम अपने मन का ध्यान, सिंपल सी चीज है, अगर मन का ध्यान यहां से वहां लगा दिया जाए तो हम उस चीज को भूल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया, हमें तंग किया, तो वो पास्ट की चिंता, पास्ट की परेशानी, पास्ट का उसका व्यवहार, हम क्या करते हैं, बार बार उसके ऊपर ध्यान डालते और बार बार ध्यान डाल डाल के उसको मन ही मन रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। और जिस चीज को रिवाइज किया जाता है वो चीज भूलती है या याद होती है, बताइए मुझे। आप स्कूल में पढ़े हैं, बचपन में बच्चों को भी सिखाया जाता है किसी चीज को अगर याद करना है, व्हाट इज द वे, उस चीज को बार बार याद करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार मन ही मन रिपीट करो। आप किसी टेलीफोन नंबर को भी 10 बार लिखेंगे, 10 बार मन में दोहराएंगे, याद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज को भूलना चाहिए उसे मन ही मन बार बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो वो बात भूलेगी या याद होगी, उसकी स्मृति विस्मृति में चेंज होगी या उस स्मृति पक्की स्मृति में चली जाएगी, और ही पक्की हो जाएगी। तो ये गलती अब नहीं करनी है। हम सबका अनुभव है कि मान लो हम अपना ध्यान, अपना अटेंशन इधर के बजाय, इस तरफ के बजाय उस तरफ लगा देते हैं, किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो लंबे समय के बाद धीरे धीरे जो पास्ट की मेमोरी है वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है, वो फीकी पड़ जाती हैं, पुरानी यादें धूमिल हो जाती हैं और उनकी जगह नई यादें, नई बातें स्थान ले लेती हैं। तो अटेंशन डाइवर्ट करके आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो वही बात याद आएगी, वहां से उठ के कोई और काम करने लगे तो वो बात, आपका ध्यान काम पे चला जाएगा, वो बात भूल जाएगी। इसको, इसके लिए ये तो है बेनिफिट, लेकिन अटेंशन डाइवर्ट भी होगा कैसे? यू हैव टू बिकम इंट्रोवर्ट, फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट आदमी होता है वो बार बार दूसरे के ऊपर नजर रखता है, वो बार बार ये देखता रहता है कि आदमी बड़ा टेढ़ा है, इस आदमी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये आदमी अच्छा नहीं है, इसमें इतनी बुराइयां हैं, इतने दोष हैं, दूसरों की नुक्ताचीनी, दूसरों की बुराइयों की डिस्कशन वर्णन वही करता रहता है। और जो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, वो दूसरे को देखने के बजाय अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, मैं कहां गलत था, उसको भरने की कोशिश करता है। और इसके दो बेनिफिट हैं। जैसे ही हम अपनी चेकिंग करते हैं, अपने गुणों के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, इसके दो बेनिफिट हैं। नंबर वन बेनिफिट, जब आप किसी की कमी को देखने के बजाय अपनी कमी को देखते हो तो आप उस कमी को भरने में सक्षम बनते हो। नंबर टू बेनिफिट कि आपका ध्यान बार बार जब दूसरे की कमी की ओर जा रहा था, उसने जो आपके साथ किया वो बुराई आपको चुभ रही थी, वहां से आपका ध्यान हटके अपनी ओर लगता है, आपकी अपनी इंप्रूवमेंट होती है, आपको उस बार बार जो आपका मन वहां जा रहा था उससे आपको फ्रीडम मिलती है। फिर आप कहते हो जाने दो, लेट गो, जो वो करता है करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उसकी बुराइयों को देख के, उसकी ऊपर नजर रख के, उसने गलत किया तो उसका जिम्मेवार वो है। अगर आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, अपना अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक स्लोगन यहां दिया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो और उसे प्राप्त करने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखने का आपको टाइम ही ना मिले। दूसरों की बातें मन में तो तब जाएंगी जब आप उनको देखेंगे कि वो क्या गलत कर रहे हैं, कहां गलती हो रही है। नहीं, अपने को विजी कर दो अपने लक्ष्य की, महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही मंजिल के करीब रहेंगे। जो व्यक्ति ये देखता रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है, उसे खुद को क्या करना है इसके लिए टाइम नहीं मिलता। सदा सोचो, दूसरे को देखना पर चिंतन पर दर्शन, दीज आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ माई स्टडी। कोई साइंस का स्टूडेंट के कॉमर्स की किताबें पढ़ेगा? दूसरे को देखेंगे ही नहीं तो मन में बातें रजिस्टर नहीं होंगी तो उनको भुलाना आसान होगा। फिल्टर लगाने की जरूरत है, क्या सुनना है क्या देखना है। हम क्या करते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। बहुत सी न्यूज, बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे कानों या आंखों तक पहुंचती है। दुनिया में कितनी बातें हो रही हैं और इतनी बातें हैं जिनको हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम सुन लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। कोई व्यक्ति उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, वो आपने देखा सुना तो किस आपकी मेमोरी में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो आपकी मेमोरी फुल होगी या नहीं होगी, और फुल किससे होगी? गार्बेज से। बिल्कुल जो बिल्कुल निकम्मी बातें हैं, वो बातें जो बिल्कुल यूजलेस हैं, मान लो वो ठीक भी नहीं कर रहा कोई आदमी, बहुत गलत है, लेकिन उसकी करनी उसके साथ, आपकी करनी आपके साथ, हरेक की अपनी अपनी करनी भरनी है। मुझे उससे परेशान नहीं होना है, उस बात को सुनते हुए भी नहीं सुनना है, तभी अटेंशन डाइवर्ट होगा। नहीं तो दूसरे की बुराई दिखी तो चिंतन चलेगा, मन में रजिस्टर्ड होगी, और रजिस्टर्ड हो जाएगी उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसको इग्नोर करना ही समझदारी है। हम भगवान को कहते हैं, भगवान जी मेरे अवगुण चित्त पे मत धरो, कहते या नहीं कहते? तो भगवान क्या कहते हैं, तुम भी किसी के मत चित्त पे धरो। मैं तो तुम्हारे चित्त पे नहीं धरूंगा, पर तुम भी किसी के अवगुण चित्त पे नहीं धरो। बड़ा सुंदर है, किसी ने बात कही है, किसी के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, किसी के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू खुद हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नजर खराब ना कर। आप क्या बनना पसंद करेंगे, फॉल्ट फाइंडर बनना चाहेंगे या सॉल्यूशन सीकर, कमियां देखने वाला बनना चाहेंगे या कमियों को भरने वाला, समाधान का अंग बनेंगे या समस्या का अंग? बहुत सुंदर दोहे हैं, दोस्त पराए देखी करी चला हंसत हंसत, अपने नजर अपने याद ना आवई, जिनका आदि ना अंत। और इसके ऊपर किसी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। हम अपने ऊपर, अंतर्मुखी का मतलब अपने ऊपर फोकस करें, आध्यात्मिकता यही हमें सिखाती है, राजयोग यही सिखाता है कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है उसे मुझे मेमोरी में नहीं डाल के मुझे क्या करना है वो डालना है। जो बातें बीत गई उनमें बार बार नहीं जाना है, उन बातों को छोड़ देना है, कल की बातें कल हो चुकी हैं, आज पे ध्यान देना है। आज हम नए दौर पे नई कहानी लिखने वाले हैं, तो अभी एक बहुत सुंदर गीत आपके मनोरंजन के लिए एक मिनट के लिए बजेगा, छोड़ो कल की बातें। सभी खड़े होके तालियां बजाते हुए डांस भी कर सकते हैं और खड़े होके इस गीत का आनंद लेंगे, छोड़ो कल की बातें। जैसे भी डांस करना चाहें आप, अगर किसी को ज्यादा इच्छा है तो स्टेज पे भी आ सकते हैं।
मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। आज आज पुरानी जंजीरों को छोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
डांस करने से बहुत बेनिफिट है भाई साहब कह रहे हैं, तो अगला गीत भी बजेगा 15 मिनट बाद, उसका इंतजार कीजिए। तो हम बात कर रहे थे अटेंशन को डाइवर्ट करने की। सेकेंड फार्मूला इज रिप्लेस द ओल्ड मेमोरीज, रिप्लेस द बैड मेमोरीज विद न्यू गुड मेमोरीज। कोई पुरानी बातें हैं, ठीक है, नहीं भूल रही, आप कोई अच्छी अच्छी बातें अपने माइंड में फीड कर सकते हो। नेगेटिव बातों की जगह क्या पॉजिटिव बातें डाल सकते हैं? क्या आप अपने आप को ऑटो सजेशन दे सकते हैं? जो बातें आपको तंग कर रही हैं उनको वहीं फुल स्टॉप लगा के उनको रिप्लेस पॉजिटिव से नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो वो पुरानी दुखद यादों के बजाय कुछ अच्छी यादें मन में डाल दें, ये भी एक तरीका है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, बहुत मोटिवेशनल है, बचपन में मैंने सुनी थी। महात्मा बुद्ध का एक चेला, एक शिष्य, एक बौद्ध भिक्षु, जब उसकी शिक्षा पूरी हुई उसने कहा गुरुजी मुझे धर्म प्रचार के लिए उस इलाके में जाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा जिस इलाके में तुम जाना चाहते हो वहां ठीक लोग नहीं हैं, बड़े हिंसक लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, तुम वहां जाओगे हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज कर दे, आपका अपमान कर दे, आपके लिए कुछ बुरा कह दे, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने जवाब दिया गुरुजी मैं सोचूंगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत दयालु लोग हैं, इन्होंने मुझे गाली दी लेकिन किसी ने भी मुझे हाथ से नहीं मारा, मैं उनका थैंक्स करूंगा। गुरुजी ने कहा हो सकता है कुछ लोग होंगे जो तुम्हें हाथ से भी मार देंगे। तो शिष्य ने कहा गुरुजी तब भी मैं कहूंगा कि ये लोग बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे हाथ से तो मारा पर इन्होंने मुझे पत्थरों से नहीं मारा। गुरुजी ने कहा कि हो सकता है कुछ लोग आपको पत्थरों से भी मार दें। शिष्य ने कहा गुरुजी तब भी मैं उनके लिए पॉजिटिव सोचूंगा, मैं कहूंगा ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं, इन्होंने पत्थरों से मारा लेकिन डंडे से मेरी पिटाई नहीं की। गुरुजी कहते हो सकता है कुछ लोग डंडों से भी आपकी पिटाई कर देंगे, फिर क्या करोगे? शिष्य कहने लगा मैं तब भी समझूंगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, इन्होंने डंडे से मेरी पिटाई की, किसी ने मुझे जान से तो नहीं मारा। गुरुजी ने कहा वो इलाका ठीक नहीं है, हो सकता है एक आधा आदमी आपको जान से मार दे, फिर क्या करोगे? शिष्य ने कहा गुरुजी मैं फिर भी उनका धन्यवाद करूंगा, फिर भी कहूंगा ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं, इन्होंने मुझे जान से मारा, देखो मेरे को मुक्ति मिल गई, इस दुनिया से मुक्ति मिल गई, मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। ये है तरीका नेगेटिव को पॉजिटिव में रिप्लेस करने का। हमारे साथ छोटी सी बात हो जाती है और छोटी की बात को हम पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं धरती फट गई, आसमान खा गया, क्या हो गया, होती छोटी सी बात है। सदा सोचो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लेट गो, थर्ड फार्मूला इज लेट गो, जाने दो, पकड़ के नहीं बैठो। अगर आप किसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे वो चीज आपको दर्द देगी। क्या आप में पकड़ने का संस्कार है, बातों को पकड़ने का? ये मोबाइल मेरे हाथ में है, इस मोबाइल को आसानी से मैं 2 मिनट तक पकड़ के ऐसे खड़ा हो सकता हूं, इस मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन कोई कहे कि आपने 2 मिनट के बजाय 2 घंटे तक इसको ऐसे खड़े रह के दिखाना है तो मेरे हाथ में दर्द होगा या नहीं होगा? होगा। चलो 2 घंटे तक भी मेरी कैपेसिटी है। कोई कहे 2 घंटे नहीं, 2 दिन तक आपने इस मोबाइल को ऐसे ही पकड़ के रखना है, फिर क्या होगा? तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई कहे 2 दिन नहीं, 2 साल आपने इसे पकड़ के रखना है, तो मेरा परमानेंट स्टैच्यू बन जाएगा यहां। दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, मेरे को पैरालिसिस हो जाए, ये हाथ काम करना बंद कर दे। तो ये तो हाथ से मोबाइल को पकड़ने की बात है। इसी तरह हम मन में किसको पकड़ के रखते हैं? मन को, मन में बातों को पकड़ के रखते हैं। हम बातों को भूलना ही नहीं चाहते, बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते। वही मोबाइल है, वही वजन है, लेकिन जैसे ही उसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी दर्द भी बढ़ेगा। बात वही है, 2 मिनट में आपने लेट गो कर दी, भुला दी, दर्द बहुत कम होगा। 2 घंटे तक साथ रखा, दर्द बढ़ेगा। 2 दिन रखा और बढ़ेगा। और जो कहते हैं हम सारी उम्र नहीं भुलाएंगे, वो परमानेंट स्टैच्यू बन जाएंगे, दर्द से उनका हाल वो हो जाएगा। और ये दर्द, ये हाथ से मैंने केवल एक काम नहीं करना है कि मैंने मोबाइल ही पकड़ना है, मेरे को जीवन में कितने काम करने, वो काम होंगे फिर? नहीं होंगे। मेरा मन, जिस मन में मैंने बातें पकड़ के रखी हैं, अगर वो मन दर्द वाला मन हो गया तो उससे दूसरे काम हो सकेंगे? दर्द वाले मन को जब हम ऑफिस में लेके जाएंगे, जब हम अपनी फैमिली में लेके जाएंगे, तो वहां फिर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? नफरत, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आएगी या नहीं आएगी? आएगा। फिर जीवन खुशनुमा कैसे बनेगा? इसलिए अब छोड़ने का तरीका क्या है? मोबाइल को छोड़ने का मैंने रख दिया, मेरे से तो 2 मिनट भी पकड़ा नहीं गया। मोबाइल को रख दो, बातों को छोड़ दो, पकड़ के नहीं बैठो। पकड़ोगे तो वो बातें यमदूत बनकर, पुरानी बातें, पास्ट की बातें यमदूत बनकर आपको तंग करती रहेंगी। सदा सोचो जो हुआ वो सही हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। जो पास्ट हो गया उसमें ही कल्याण है, वही हुआ जो होना चाहिए था, जो इस वर्ल्ड ड्रामा में फिक्स है, जो खेल में निश्चित है, वही हुआ। कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, नथिंग न्यू, एवरीथिंग जो कुछ हुआ मेरे कल्याण के लिए हुआ। तो आप पास्ट से छुटकारा पा सकते हैं। आप सोचो इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नाउ इट इज ओवर। ओवर मीन्स ओवर, अब उसे बार बार मुझे याद नहीं करना है। चौथा फार्मूला, रिमेंबर द कार्मिक थ्योरी, अंडरस्टैंड द कार्मिक थ्योरी। कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, जो बिना आध्यात्मिकता के आप समझ नहीं कर सकते। आप सब ये मानते होंगे कि ये दुनिया हिसाब किताब की दुनिया है। बहुत लोगों से हमने दुख लिया भी है, बहुत लोगों को दुख दिया भी है। जिनसे कर्ज लिया है वो कर्ज वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सोचो, पुनर्जन्म का कोई हिसाब किताब हुआ होगा जो अब सेटल हो गया, जो आपके साथ पास्ट में हुआ, उसको भूलने का तरीका बता रहा हूं। सोचो वो अकाउंट अब सेटल हो गया, अब मुझे नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। जो कर्ज लिया था, ये नियम है कि वो आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जिसका लिया है उसको देना था, दे दिया। ये स्मृति में होगी तो आप घबराएंगे नहीं। अब उस कर्ज को या तो आप खुशी खुशी चुकतू करो या रो धो के चुकतू करो, किसकी च्वाइस है? किसकी च्वाइस है? या तो आप दुखी होके ले गया मेरा सारा कुछ, खाली हो गया मैं, या कहो भाई ले जाओ भाई, आपका ही तो था, आपने दिया था, ले जाओ। दो तरीके हैं। तो अब सोचो कि बोझ उतर गया, जो बोझ की गठरी थी, कर्ज की गठरी थी, वो अब सेटल हो गई, अब मैं हल्का हो गया, अब मुझे खुश रहना है। उसको बार बार याद करेंगे, अगर पास्ट को अगर बार बार याद करेंगे तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि आप याद करेंगे तो रिवेंज की फीलिंग आएगी, नफरत पैदा होगी, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, अकाउंट बढ़ेगा, सेटल नहीं होगा। सेटल करने का तरीका है फॉरगेट, भूल जाओ, जिसका था ले गया, मैं हल्का हो गया, कर्ज मुक्त हो गया। ये कर्म थ्योरी हमें बताती है। कहते हैं ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये सुंदर तब बनती है जब हम वर्तमान के पलों का आनंद लेते हैं। कई लोग तो पास्ट में जाते हैं, कई फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है, होता वही है जो खेल में निश्चित होता है, जो स्क्रिप्ट में दी गई है हर किसी को, उसी के अनुसार होगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना होगा होकर रहेगा, तू कल के फिक्र में आज की खुशी को बर्बाद ना कर। जो होना होगा होके रहेगा। एक बहुत सुंदर सा गीत आपके सामने दोबारा आएगा, आपने उसको एंजॉय करना है, स्टार्टिंग से बजाना। सोचना क्या जो होगा देखा जाएगा, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी क्यों सोचते रहे फ्यूचर के बारे में, अभी तो जो हमारे हाथ में उसको एंजॉय करें।
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, थोड़ा मुस्कुराओ थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। पड़ेगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा।
बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चार बातें भी आप कर सकते हैं, लेकिन पांचवी बात जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप कर सकते हैं तो पास्ट को भुलाना, अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकलना मुश्किल नहीं होगा, वो है फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ, माफ कर दो, भूलना है दूसरे को माफ करना सीख जाओ। अगर जीवन को खूबसूरत बनाना है, रिश्तों को मधुर बनाना है, तो जिन लोगों के प्रति आपके मन में बदले की भावना है, दिल से उन्हें माफ कर दो। और जिन लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया है, आपको तंग किया है, जिन लोगों को आपकी वजह से कष्ट पहुंचा है, उनको दोनों हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना कर दो। माफी मांगना और करना दोनों ही बहुत बड़े गुण हैं। अगर ये चीज हम में आ जाए, बहुत आगे पहुंच सकते हैं हम। हमें दूसरों को माफ करना है। हमें दूसरों को माफ इसलिए नहीं करना कि वो माफी के हकदार हैं। हमें दूसरों को माफ इसलिए करना है क्योंकि हम शांति के हकदार हैं। हम दूसरों को माफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये पता नहीं कि इस व्यक्ति ने क्या गलती की है। हम दूसरे को माफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर के बने हैं, हमें कोई फीलिंग नहीं है। हम दूसरे को माफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं है। हम दूसरे को माफ इसलिए करना कर रहे हैं क्योंकि माफ करना हमारे अपने फायदे में है। हम दूसरे को माफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा देर परेशान दुखी नहीं रह सकते। हम माफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, परेशानियों को दूर भगाना चाहते हैं, जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हरी का घटियो, जो भृगु मारी लात। बड़े आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या है? छोटों को माफ करना। गलतियां छोटों से होती हैं। कहते हैं ऋषि भृगु ने गुस्से में आके जोर से अपनी लात विष्णु के हरी भगवान के छाती पे मारी, लेकिन विष्णु ने बड़े प्यार से कहा, भृगु महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, तुम्हारे पांव बड़े नरम है, कहीं चोट तो नहीं आ गई। ये है क्षमा भावना। बड़ा दिल वाला व्यक्ति ही दूसरे को माफ कर सकता है, छोटे वाला नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कमजोरों का नहीं। कमजोर व्यक्ति लड़ता है, क्षमा कौन करता है? जिसके पास ताकत होती है। जो बड़ा व्यक्ति होता है वही क्षमा करता है। To err is human, to forgive is divine. जो आपके साथ गलत करते हैं, अपमान किया, धोखा दिया, कुछ भी किया, उन लोगों का दिल से थैंक्स करो। किस लिए? किस लिए? क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तंग किया, आपका नुकसान किया, अब आप उनको माफ कर सकते हो। और अगर आप माफ कर रहे हो तो ये मौका किसने दिया? उन लोगों ने। और माफ करके आप क्या बन रहे हो? डिवाइन। टू फॉरगिव इज डिवाइन। जो माफ करता है वो देवता होता है। तो आपको देवता कौन बना रहा है? जो आपका गलत कर रहे हैं। इसलिए उनको थैंक्स करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कहते जितनी जल्दी हम भगवान से अपनी भूलों के लिए माफी चाहते हैं, क्या उतनी ही जल्दी हम दूसरों को भी माफ करते हैं? भगवान कहते हैं बच्चे, आप दूसरों को उनकी भूलों के लिए, उनके अपराधों के लिए रात को सोने से पहले माफ कर दिया करो। तुम्हारे सवेरे उठने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ कर दूंगा। मंजूर है सौदा? कितनी विडंबना की बात है, अफसोस की बात है, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हम अपनी 100 भूलों के लिए भी क्षमा की उम्मीद रखते हैं, और दूसरे से एक भी भूल हो जाए तो हम धर्मराज बनकर उसको पनिश करने की सोच लेते हैं। इंसानों से ही गलतियां होती हैं, इंसानों से नहीं होंगी तो किससे होंगी? कमजोर व्यक्ति माफ नहीं करता। क्षमा करने वाला सजा देने वाले से भी बड़ा होता है। जीवन में अगर आप कुछ कर नहीं सकते, कोई दान नहीं कर सकते, कि एक दान तो कर सकते हो या नहीं, कौन सा दान? क्षमा दान। जैनियों में बड़ा महत्व है इसका। एक दिन साल में वो मनाते हैं जिसमें वो सबको माफ करते हैं, और जिनसे कष्ट दिया हो किसी को उनसे माफी मांग लेते हैं। हर धर्म में, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप दूसरों को माफ करो, भगवान तुम्हें माफ करेगा। लेकिन हम माफ करने के बजाय क्या करते हैं? बदला लेने की सोचते हैं। माफ करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए तब माफ होता है, बड़ी एलिवेटेड स्टेज चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। आम आदमी को ऐसे भी करो, ऐसे करता है, क्योंकि वो कमजोर है। ताकत वो है जब आपके पास ताकत हो, फिर भी आप दूसरे को छोटा समझ के माफ कर देते हैं। माफ करना, क्या होता अगर बचपन में हमारे मां बाप ने हमारी गलतियों के लिए हमें माफ नहीं किया होता? जरा आप सोचिए तो सही, क्या होता अगर भगवान हमारे हर अपराध के लिए हमें तुरंत सजा दे देता? वो भी तो माफ करता है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? ओ गॉड फॉरगिव व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्रॉस पे चढ़ा रहे थे, दूसरे को अनाड़ी समझ के माफ कर दिया करो, छोटा समझ के माफ कर दिया करो, तभी आप बड़े बनेंगे, और बड़े बनेंगे तो पास्ट को भूलना आसान हो जाएगा। फॉरगिवनेस कभी भी बिना प्यार से नहीं आ सकती, कभी भी बिना प्यार से फॉरगिवनेस जीवन में नहीं आ सकती। याद रखो, फॉरगिवनेस के लिए आपके पास प्यार होना चाहिए, आपका दिल प्यार से भरा होना चाहिए। अगर दिल प्यार से भरा नहीं होगा तो दूसरे को माफ नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस इज की टू फ्रीडम, फॉरगिवनेस इज की टू हैप्पीनेस। बहुत जरूरी है दूसरे को माफ करना। क्यों जरूरी है? एक बार एक नौजवान मेरे पास आता है, कहता सर मुझे बहुत गुस्सा है, मैं दूसरे को माफ नहीं कर सकता। आप कहते हो माफ किया करो, मैं माफ ना करना चाहता, ना मेरे पास माफ करने की ताकत है, ना मैं माफ करूंगा। मैं के क्या हो गया, क्यों नहीं माफ करना चाहते? किसके प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा है? दो चार के नाम तो बताओ। कहने लगा, बचपन में मेरी मां ने मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे बहुत गुस्सा है। पिताजी ने मुझे डांट फटकार लगाई, बहुत गुस्सा है। स्कूल गया, टीचर्स ने मुझे मारा, बहुत गुस्सा है। बाद में शादी हो गई, बीवी ने भी तंग किया, बहुत गुस्सा है। मैंने कहा समझ गया आपकी बात। फिर उसने कहा कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती, टेंशन बहुत हो गया है, डिप्रेशन में भी चला गया हूं, गोलियां लेता हूं उनका भी कोई असर नहीं होता। मैंने उसे कहा, भाई एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें किसी को माफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो उल्टा माफी मांगने की जरूरत है। वो कहता, क्यों? मैं क्या, मां कभी भी बच्चे को तंग नहीं करती, बाप ने अगर दांत फटकार लगाई होगी वो तुम्हें सुधारने के लिए लगाई होगी, टीचर ने मारा होगा वो भी तुम्हें पढ़ाई के लिए मारा होगा, उसमें उनका कसूर नहीं है। तुम्हें मैं एक काम की बात बताता हूं, तुम्हारी जो ये हालत हुई है, तुम्हें नींद नहीं आती, टेंशन हो गई है, गोलियों का असर नहीं होता, उसका कारण है तुमने पुनर्जन्म में लोगों को बहुत कष्ट दिया है, और जिन लोगों को तुमने कष्ट दिया है उनकी दुख भरी बद्दुआएं, वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें वर्तमान के इन पलों में ले आई है, स्थिति में ले आई है जब तुम डिप्रेशन में टेंशन में चले गए हो, जो तुम्हारा मन हर एक के लिए गुस्से से भर गया है। अब उसको अगर ठीक करना है तो रात को सोते वक्त या सवेरे उठने से पहले उन सब लोगों से क्षमा याचना कर लो जिनको आपकी वजह से जाने अनजाने में दुख पहुंचा है। तुम आज इस स्थिति में आ गए हो कि हर व्यक्ति तुम्हें दुश्मन नजर आ रहा है, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन शत्रु नहीं है, सभी तुम्हारे अपने हैं, सभी तुम्हारे मित्र हैं, कोई बेगाना नहीं है। तुम भूल जाओ, सबको अपना समझो। आप लोगों को लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मन में अगर किसी के प्रति भी गुस्सा भरा पड़ा है, किसी के लिए भी नफरत है, दुर्भावना है, उनके लिए सोचो ये हमारे मित्र हैं। ऑल दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल दीज आर माई गुड फ्रेंड्स, नो वन इज माई एनमी, कोई मेरा शत्रु नहीं, सब अपने हैं, सब मेरे हैं, कोई बेगाना नहीं। सब जीव जंतु, सारी की सारी प्रकृति, सभी प्राणी मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। नौ ग्रह भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कहीं ग्रहों से डरते रहते हैं, ग्रह भी मेरे फ्रेंड्स हैं। ग्रहों का हमारे से क्या लेना देना, हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो हमारा बिगाड़ेंगे, वो भी हमारे अपने हैं, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ये भाव आपको गुड फीलिंग लाएगा, गुड फीलिंग में लाएगा, और जब आप अच्छा महसूस करेंगे फिर आप किसी को भी माफ कर देंगे। आप माफ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप खुद खाली हैं, खुद दुखी हैं। एक दुखी आदमी को आप हाथ भी लगाओगे वो गुस्से में आपको भी हाथ उठा देगा, और जिस दिन आपकी प्रमोशन हुई हो, आपकी लॉटरी निकली हो, आपको कौन सा कमीशन चल रहा है, 7th कमीशन का पैसा मिल गया हो, आप उस दिन कोई आपको धक्का भी दे देगा, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, आप खुद सॉरी कहोगे क्योंकि उस दिन आप खुश होंगे, और जिस दिन खुद दुखी हैं उस दिन कोई देखेगा तब भी आप उसको घूरने लग जाओगे। तो आपने गुड फीलिंग में अपने आप को लाना है, अपने आप को प्यार से भरना है। खाली व्यक्ति गुस्सा करता है, खाली बर्तन शोर मचाते हैं, चिल्लाता कौन है जो खाली है, जो प्यार से भरा होगा वो ना गुस्सा करेगा ना नफरत करेगा, वो कहेगा लेट गो, जाने दो, माफ कर दो। तो प्यार से अपने आप को भरना है। अगर दूसरे को मारना भी है तो किल अदर्स बाय योर काइंडनेस, आप उसके ऊपर इतने दयालु कृपालु हो जाओ कि वो खुद ही मर जाए, मारने की जरूरत ही ना पड़े, दया से मार सकते हो, प्यार से किसी को घायल कर सकते हो। तो अभी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा जिसको आपने गुनगुनाना भी है, मुस्कुराना भी है और उसको एंजॉय करना है। बहुत इंपॉर्टेंट गीत, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, प्यार की बोली बोलो, प्यार से रहना सीखो जी। सभी एक बार दोबारा खड़े हो जाएंगे ताकि आपको नींद ना आए और आपकी कसरत होती रहे।
में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार कर रखो नाता।
प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार कर रखो नाता।
प्यार लुटाते सबको,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
तो आप ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, क्या सीख के जाएंगे? प्यार से चलना, प्यार से रहना। तो ये दुनिया कैसी बन जाएगी? कितनी प्यारी बन जाएगी? बहुत प्यारी बन जाएगी। चारों तरफ प्यार की गंगा बहने लगेगी। आपका घर प्यार के खुशबूदार पुष्पों से खिल उठेगा। प्यार से रहना है। प्यार से बड़ी चीज दुनिया में कोई होती नहीं। किसी ने कहा, आदमी कुछ हो या ना हो, आदमी कुछ हो या ना हो, पर इंसान होना चाहिए। हर जुबान पर प्यार का पैगाम होना चाहिए। ढाई अक्षर के शब्द, स्नेह, प्यार, प्रेम, लेकिन पत्थर को भी पिघला देते हैं। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। गुस्सा वो करता है जिसके अंदर प्यार नहीं होता। जिसको प्यार से कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो नफरत, गुस्सा, बदले का सहारा लेता है। प्यार से तो लोग शेर को भी सर्कस में नचाते देखे गए हैं। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। तो आपको फ्रीडम फॉरगिवनेस से मिलेगी। फ्रीडम है पास्ट से। आपको पास्ट से छुटकारा मिलेगा। जितना क्षमा करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्षमा मांगना वो भी इंपॉर्टेंट है। माफी मांग लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। किसी को सॉरी कहने में हमें अपने अहंकार को आगे आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब माफी मांग लेता है, दोनों हाथ जोड़कर, सारा झंझट खत्म हो जाता है, सारा बात खत्म हो जाती है, झमेला खत्म हो जाता है। और जब भी कोई गलती हो जाए, दोनों हाथ जोड़ के सॉरी कह दो, बात वहीं फिनिश हो जाती है। हमें अहंकार को आगे आने नहीं देना चाहिए। अकड़ के नहीं रहना चाहिए। कहते अकड़ता वही है, अकड़े झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें झुक के चलना है, रुक के चलना है, प्यार से चलना है। किसी से माफी मांगने की जरूरत पड़े तो माफी भी मांग लेनी है, और एंगर की जगह प्यार को अपने जीवन में स्थान देना है। अगर आपने दूसरे को माफ करना है तो कुछ बातें याद भी रखनी पड़ेंगी लास्ट में। क्या याद रखना पड़ेगा कि मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा कौन है? उम्मीद, जो प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा, माफ करने की ताकत कहां से आएगी? मन से आएगी। मन में अच्छे विचार लाएंगे तब आएगी। ताकत का सोर्स है परमात्मा। इसलिए प्रेयर में हम गाते हैं, हमको इतनी मन की शक्ति देना मन विजय करे। लास्ट में कहते हैं दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। कहते हैं या नहीं कहते? तो वो शक्ति कहां से आएगी? उस परमात्मा से। जो मैंने कहा डाइवर्ट द अटेंशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज द प्रोसेस टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू सुप्रीम वर्ल्ड, टुवर्ड्स गॉड। जब परमात्मा को याद करते हैं, यहां से बुद्धि हटा के परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, वो एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है अपना ध्यान इधर से उधर लगाने की, अटेंशन को डाइवर्ट करने की। इसलिए भगवान के ऊपर यकीन रखिए, जो हुआ सोचिए वो अच्छा था, उसमें ही मेरा कल्याण है। क्योंकि भगवान जो कुछ करता है किसके लिए करता है? अच्छे के लिए करता है। उसके फूलों से भी हमें प्यार होना चाहिए और उसके कांटों से भी प्यार होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये गीत आपने खुद गाना है। अब मैं आपको 2 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा एंड में। सभी बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाएं और आज का जो लेक्चर था उसको हम उसके ऊपर 2 मिनट चिंतन करेंगे। आंखें बंद करें या आंखें खुली रखें, अपने आप को याद दिला दें कि आज से मैंने अपने जीवन का नया अध्याय, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया उसका चिंतन मुझे नहीं करना है। बीती बातों से सबक लेके मुझे आगे बढ़ना है। सारा का सारा ध्यान मुझे वर्तमान में लगाना है। वर्तमान के हर पल को जीकर मुझे वर्तमान का मान बढ़ाना है। क्योंकि मेरे हाथ में केवल यही पल है। अगर मेरे ये पल, आज का दिन मेरे लिए सुनहरा बन गया तो निश्चित तौर पर मेरा भविष्य भी स्वर्णिम बन जाएगा। मुझे अपने मन पटल पर बीती हुई बातों को बार बार दोहराना नहीं है। जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, जो करना था उन्होंने किया, आज से मैं उन्हें सच्चे दिल से क्षमा कर रहा हूं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने वही किया जो उन्हें इस ड्रामा में रोल मिला हुआ है, एक एक्टर की तरह। मुझे अब हीरो एक्टर बनकर बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर देना है। सब मेरे अपने हैं। कि आज के लेक्चर के बाद और 3 दिन के इन प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हुए खुशनुमा रास्ते की ओर आगे बढ़े और आपके जीवन में पास्ट से फ्रीडम मिले और वर्तमान खुशबूदार खुशनुमा बन जाए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।